معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے کتاب 10 کروڑ میں دو شیطان. یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز اسرا سرور، پیشکش محمد اظہر، مصنف مظہر کلیم ایم اے. مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 03002919600. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. اچانک ایک تیز زناٹے کی آواز فضا میں گونجی اور دوسرے لمحے اس کی گردن اس صفائی سے کٹ گئی جیسے تار سے صابن کٹ جاتا ہے. سر دور جا گرا، گردن سے خون کا فوارہ ابل پڑا. اس کا بقیہ جسم ایک لمحے کے لیے لڑکھڑاتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے زمین پر آ گرا. جیسے اس کا جسم زمین پر گرا، تین تیز اور خوفناک چیخیں فضا میں گونج اٹھی. وہ تینوں چیختے ہوئے اپنے ساتھی کی طرح دیکھ رہے تھے جو زمین پر مرا پڑا تھا. کٹی ہوئی گردن اور سر سے ابھی تک خون رس رہا تھا. تینوں کی آنکھوں سے شدید خوف نمایاں تھا. خوف اور دہشت کی وجہ سے ان کے چہرے بگڑ گئے تھے، اور دوسرے لمحے ان میں سے ایک جو شاید قدرے کمزور دل کا مالک تھا، لہرا کر فرش پر گر پڑا. وہ خوف کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا. چار شوقیہ شکاریوں کی یہ پارٹی دارالحکومت کے مالدار نوجوانوں پر مشتمل تھی، جو کل دارالحکومت سے پیرامین کے جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آئے تھے. اس سے پہلے بھی وہ کئی بار جنگل میں شکار کھیل چکے تھے، لیکن آج کا یہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے قطعی انوکھا تھا. وہ 2 گھنٹے سے اس جنگل میں شکار کھیل رہے تھے. اس دوران انہوں نے 2 ہرن، 3 خرگوش اور 1 چیتل شکار کیا تھا. پھر جیسے ہی وہ جنگل کے انتہائی شمالی سرے پر پہنچے، اچانک یہ واقعہ پیش آ گیا. وہ چاروں آپس میں باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک تیز زناٹے کی آواز فضا میں گونجی اور دوسرے لمحے ان تینوں سے ذرا آگے جانے والے کی گردن کٹ کر ایک طرف جا پڑی. انہیں کوئی ایسی چیز بھی نظر نہ آئی جس سے گردن کٹی ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز پھینکنے والا نظر آیا. اس وجہ سے ان پر دہشت طاری ہو گئی تھی. وہ دونوں ایک لمحے تو بت بنے کھڑے رہے، پھر ان میں ایک جو عمر کے لحاظ سے ان سب سے بڑا نظر آ رہا تھا، دوسرے سے مخاطب ہوا. جمان، یہ سب کیا ہوا، کیسے ہوا؟ اس کی آواز سے بھی دہشت صاف جھلک رہی تھی. کچھ سمجھ میں نہیں آتا سلیم، سعید کی گردن کیسے کٹ گئی؟ جمال نے جواب دیا. ان کے حواس بحال ہوتے جا رہے تھے، اور فوری دہشت اور خوف جو ان کے ذہنوں پر طاری ہو گیا تھا، آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا. پھر وہ دونوں اس مردہ نوجوان جس کا نام سعید تھا کی طرف لپکے. انہوں نے اس کے چاروں طرف غور سے دیکھا، لیکن ایسی کوئی چیز انہیں نظر نہیں آئی جسے وہ اس واقعے کا موجب سمجھتے. پھر وہ اپنے بے ہوش ساتھی کی طرف متوجہ ہوئے. جمال نے اپنے کندھے سے لٹکی ہوئی چھاگل سے پانی نکال کر بے ہوش نوجوان کے چہرے پر چھینٹے مارے. چند لمحے بعد اسے ہوش آ گیا. کک کک کیا ہوا؟ اس کے منہ سے بے رب سے جملے نکلے. ہوش میں ہو بشیر، ہمیں اپنے بچاؤ کی بھی فکر کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے ہم بھی اندیکھی موت کا شکار ہو جائیں، جمال نے کہا. تھوڑی دیر بعد وہ وہاں کھڑے سوچ رہے تھے کہ اب کیا جائے. وہ اپنی ساتھی کی لاش بھی یہاں نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور خوف کی وجہ سے یہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے. بشیر، میرے خیال سے تم جاؤ اور پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دو. ہم دونوں یہاں ٹھہرتے ہیں، کیا خیال ہے سلیم؟ جمال نے، جو ان سب میں زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک نظر آ رہا تھا، نے بشیر اور سلیم سے مخاطب ہو کر کہا. ٹھیک ہے بشیر، تم جاؤ اور پولیس کو لے کر آؤ، لیکن جتنی جلدی ممکن ہو سکے واپس آنا. سلیم نے بھی جمال کی تائید کی، اور پھر بشیر اطلاع لینے کے لیے چلا گیا. وہاں سے 200 گز دور ان کی جیپ موجود تھی. وہ تقریباً بھاگتا ہوا جیپ تک گیا، اور پھر پولیس اسٹیشن جا پہنچا. اس نے وہاں موجود انچارج کا تمام واقعہ تفصیل سے بتایا. پہلے تو انچارج اس واقعے پر یقین کرنے کو تیار نہ ہوا، کیونکہ ایسا کوئی واقعہ اس سے پہلے اس جنگل میں نہیں ہوا تھا. لیکن بشیر کی بے پناہ اصرار اور یقین کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا. جب بشیر پولیس کے مسلح گارڈ کو لے کر وہاں پہنچا، تو اس کے ذہن کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا. جمال اور سلیم کی لاشیں بھی اس کے پہلے ساتھی سعید کے ساتھ ہی پڑی تھیں۔ ان کی گردنیں بھی ویسے ہی کٹی ہوئی تھیں۔ وہ ان کی لاشیں دیکھ کر ضبط نہ کر سکا اور چیخیں مارنے لگا۔ پولیس کے سپاہی اور تھانے دار بھی حیرت اور دہشت سے ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے۔ لاشوں کی حالت اور دہشت سے ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے۔ لاشوں کی حالت ایک ایسی تھی کہ جو بھی دیکھتا اس کا حشر وہی ہوتا۔ جسم کہیں پڑے تھے، سر کہیں پڑے تھے۔ تھانے دار نے جلدی اپنے اوپر قابو پا لیا اور پھر اس نے بڑی باریکی بینی سے چاروں طرف کی زمین اور درختوں کا معائنہ کیا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے آلے قتل کا پتہ چل سکے، لیکن بس یار کوشش کے باوجود ایسی کوئی چیز دستیاب نہ ہو سکی۔ البتہ سامنے والے ایک درخت پر ہلکا سا کٹ کا ایک نشان اسے نظر آیا، لیکن وہ اس سے کوئی خاص سراغ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ ایک سپاہی کو اس نے مرکزی ہیڈ کوارٹر میں سجی وغیرہ واقعے کی اطلاع دینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہاں پولیس کے اعلیٰ حکام، فنگر پرنٹ کے ماہرین اور ایمبولینس کاریں پہنچ گئیں۔ پولیس نے ارد گرد کا تمام علاقہ چھان مارا لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آخر تھک آ کر انہوں نے لاشیں ایمبولینس میں ڈالی اور واپس چلے گئے۔ اور پھر یہ حساس روز کا معمول بن گئے۔ روزانہ شمالی سائڈ کے کسی نہ کسی حصے میں شکاری اچانک اس پولیس کار موت کا شکار ہو جاتے۔ پولیس اور اعلی حکام نے بڑے وسیع پیمانے پر ان واقعات کا اسباب جاننے کے لیے چھان بین کی، لیکن وہ سب بے سود، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ شکاریوں اور عوام کے دلوں میں ان متواصل واقعات سے اتنی دہشت پھیلی کہ انہوں نے جنگل میں شکار کھیلنا چھوڑ دیا۔ لیکن جب بھی کوئی بہادر اور مسئلہ شکاریوں کی پارٹی ان تمام باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شکار کھیلنے وہاں جاتی، اسی پولیس کار موت کا شکار ہو جاتی۔ یہ جنگل ریاست پریم نگری کی آمدنی کا بہترین ذریعہ تھا۔ جنگل میں شکار کھیلنے والوں سے باقاعدہ فیس لی جاتی تھی۔ شکاریوں کی ریاست میں آمد کی وجہ سے ریاست مختلف صورتوں میں کافی روپیہ کما لیتی تھی۔ اس کے علاوہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر ریاست سے باہر بھیجی جاتی تھی، جس سے ریاست کو ایک معقول آمدنی ہو جاتی تھی۔ شکاریوں نے جب سے اس طرف کا رخ کرنا چھوڑا تھا، ریاست کی اچھی خاصی آمدنی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ نواب بہزاد علی خان نے جو سیاست کے مالک تھے، اپنی نگرانی میں واقعات کی چھان بین کرائی، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اب تو لکڑی کاٹنے کے لیے کوئی ٹھیکیدار اس جنگل کا ٹھیکہ نہ لیتا۔ خاصی تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ رات کو اس جنگل سے مختلف رنگوں کی شعائیں بلند ہوتی، درختوں سے چنگاریاں پھوٹتی، شہر سے صاف نظر آتی۔ جاہل عوام کے دماغوں میں رفتہ رفتہ یہ یقین پیدا ہوتا چلا گیا کہ اس جنگل میں آصف نے ڈیرہ ڈال دیا ہے۔ ساری ریاست میں افواہ پھیل گئی۔ بہزاد علی خان نے مرکزی حکومت سے ان واقعات کے سراغ لگانے کے لیے جاسوس طلب کیے، لیکن وہ بھی ناکام واپس ہوئے۔ نواب بہزاد علی خان اس سلسلے میں بہت پریشان رہنے لگے۔ آخر ایک دن انہوں نے اپنے دوست وزراء خارجہ کی سیکرٹری سر سلطان کو فون کیا اور انہیں تمام واقعات تفصیل سے بتانے کے بعد ان سے مدد کی درخواست کی۔ سر سلطان نے عطا الوسع مدد کرنے کا وعدہ کیا، اور پھر چند دنوں بعد ان کی طرف سے ایک پیغام نواب بہزاد علی خان کو ملا کہ وہ ایک شخص ان کے پاس بھیج رہے ہیں جس کے متعلق انہیں یقین ہے کہ وہ ان واقعات کے اصل سبب کا کھوج نکالے گا۔ نواب بہزاد علی خان بڑی شدت سے شخص کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ پھر انہیں اتنا ملی کہ وہ شخص کل ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ نواب بہزاد علی خان جیسے ہی کھانے کے کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں گونجنے والے مترنم کہکے اور ہلکی ہلکی سرگوشیاں گہرے سکون میں تبدیل ہو گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں غرق محسوس ہوتی تھی، چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ ان کا دماغ کسی پیچیدہ اسرار کو سلجھانے کی ناکام کوشش میں مصروف ہے۔ نواب بہزاد علی ایک چھوٹی سی ریاست پریم نگر کے مالک تھے۔ ان کی ریاست ملک کی انتہائی شمالی میں سرحد کے قریب واقع تھی، اور اپنے خوبصورت اور دلکش مناظر کی وجہ سے پورے ملک میں ایک مشہور سیرگاہ کا درجہ دے رکھتی تھی۔ ملکی لوگوں کے علاوہ دنیا کے کونے کونے سے سیاح پریم نگر میں سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، اور خاص طور پر گرمیوں میں یہاں کا حسن دوبالا ہو جاتا تھا۔ سرحد کے قریب ایک بہت بڑا اور گھنا جنگل تھا جس میں ہر قسم کے درندے شکار کے لیے موجود تھے۔ یہ جنگل پیرامین کے نام سے مشہور تھا۔ کئی لوگوں اسے شکاریوں کے جنت کے نام سے پکارتے تھے۔ نواب بہزاد علی خان نرم طبیعت اور صلاح جو شخصیت کے مالک تھے، غریبوں کی بھئی خواہ تھے۔ اپنی ریاست میں انہوں نے جگہ جگہ یتیم خانے، سرائیں، اسپتال، اسکول قائم کر رکھے تھے۔ जिनका तमाम कर्ज वो खुद उठाते थे, इसलिए वो रियासत के अवाम में बेइंतहा मकबूल थे। लोग इन्हें नवाब फरिश्ता के नाम से याद करते थे। इनकी औलाद दो लड़कियों और एक लड़के पर मबनी थी। नवाब साहब की बेगम 4 साल पहले वफात पा चुकी थी। लड़का डॉक्टरी की आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड गया हुआ था। लड़कियां तालीम से फारिग हो चुकी थी। दोनों लड़कियां फर्ख जहां और माँ रुख इंतहाई शोक और चंचल तबीयत की मालिक थी। लड़कियों के अलावा इनकी दो भानियां शगुफ्ता और नाहिदा भी इनके साथ ही रहती थी, क्योंकि नवाब की हमशेरा का काफी अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। नाहिदा और शगुफ्ता की तबीयत भी फर्ख जहां और मारूख की तरह इंतहाई शौक थी, इसलिए जहां इन चारों का ग्रुप मिल जाता वहां एक कयामत ही टूट पड़ती। चारों तालीम याफ्ता और हुसन में लासानी थी। नवाब साहब चारों से यकसा प्यार करते थे। इनके लिए लड़कियों और भांजियों के दरमियान कोई फर्क नहीं था। वो चारों भी नवाब साहब से काफी हद तक बेतकल्लुफ थी, लेकिन इनके बावजूद वो इनका अदब भी बहुत करती थी। चुनाचे इस वक्त भी जैसे ही नवाब साहब खाने के कमरे में दाखिल हुए, वहां खामोशी तारी हो गई। नवाब साहब ख्यालों में खोए हुए खाना खा रहे थे। डैडी आप परेशान मालूम हो रहे हैं, अचानक मारूफ ने नवाब साहब की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। नवाब साहब चौंक पड़े और फिर फीकी हंसी इनके होठों पर नमूदार हुई। नहीं बेबी, मैं ठीक हूँ, बस जरा रियासत के मुतालिक एक मसले पर गौर कर रहा हूँ। नहीं बेबी, डैडी खाना खाते वक्त आप रियासत को भूल जाया कीजिए, फरूख जान ने उठाते हुए कहा। अब हमारी बेटी हमें नसीहत कर रही है, नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। फरूख बाजी ठीक ही तो कह रही हैं अंकल, शगुफ्ता ने फरूख की तायद करते हुए कहा। और हाँ, मुझे बताने का ख्याल ही नहीं रहा, कल एक मॉडल शख्सियत बतौर मेहमान हमारे यहाँ आ रही है, नौकरों से कहकर गेस्ट रूम ठीक करवा देना। नवाब साहब ने मारूख से मुखातिब होते हुए कहा, ओके डैडी, वैसे ये मॉडल शख्सियत कहाँ से तशरीफ ला रही है। मारूख के लहजे में दबी दबी हंसी के असरात वाजे थे। दारुल हुकूमत से नवाब साहब ने मारूख के लहजे पर गौर करते हुए संजीदगी से कहा। क्या आप इनका पेज की तारुफ नहीं करा सकते, मारूख ने कहा। इनका नाम अली इमरान है और एक खास सिलसिले में मुझे इनकी मददगार है, इसलिए वो कल यहाँ आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं पहले बता दूं, आपने इनके साथ किसी किस्म का मजाक नहीं करना, वो शायद इंतहाई संजीदा तबीयत के मालिक होंगे और जिस काम के सिलसिले में वो यहाँ आ रहे हैं इसके लिए इन्हें ज़हनी यकसोई की इंतहाई ज़रूरत है। नवाब साहब का लहजा बेहद संजीदा था। बहुत अच्छा अंकल, लेकिन आपने लफ्ज़ शायद इस्तेमाल किया है, क्या इसका मतलब है कि आप इन्हें पहले से नहीं जानते, शगुफ्ता ने एक नुक्ता निकाला। हाँ शगुफ्ता, वो पहली बार यहाँ आ रहे हैं, नवाब साहब ने संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा और फिर वो सब खामोशी से खाना खाने में मशगूल हो गए। नवाब साहब के अलावा बाकी सब के दिमाग में वो मौजूद शख्सियत घूम रही थी। सब अपनी अपनी जगह शख्सियत का तस्वरानी खाका बांध रही थी कि वो शख्सियत कैसी होगी। इतने में नवाब साहब ने खाना खाकर हाथ रुमाल से पोंछने शुरू कर दिए। बाकी सबने भी इनकी पैरवी की और हाथ धोने के बाद नवाब साहब अपने खास कमरे में चले गए और वो चारों दस्तखान से उठकर एक दूसरे कमरे में आ बैठी। शगुफ्ता बाजी, वो मौजूद शख्सियत कैसी होंगी, नाहिद ने शगुफ्ता को मुखातिब करते हुए कहा। यही मैं सोच रही हूँ, शगुफ्ता ने जवाब दिया। मेरे ख्याल में वो इंतहाई तवील कामत, कवि हेकल और उधेड़ उम्र की शख्सियत होंगी, जिसकी लंबी लंबी सफेद मूछें होंगी, सर के बाल आधे गायब और आधे बाकी सफेद होंगे। मारूफ ने अपने जहन में पैदा होने वाला खाका इनके सामने पेश कर दिया। बिल्कुल ठीक बाजी, बिल्कुल यही नक्शा मेरे जहन में भी था। इसके अलावा इनकी आंखों पर मोटे मोटे शीशों वाली धुंधली सी ऐनक भी जरूर होगी, नाहिद ने खाके में इजाफा करते हुए कहा और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। बाजी, शख्सियत कहीं अपने फलसफों और नसीहतों से बोर ना करना शुरू कर दें, शगुफ्ता ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। देखो, ये तो इसकी आमद पर ही पता चलेगा, मारूख ने जो कुछ सोचते हुए कहा और फिर वो काफी रात गए तक इस मौजूद शख्सियत पर ही बहस करती रही। घना और हैबतनाक जंगल रात के वक्त कुछ और ज्यादा भयानक लग रहा था। चारों तरफ मुख्तलिफ दरिंदों की जोरदार आवाजें गूंज रही थी। इनमें कभी कभी शेर के दिल दहलाने वाली धारें भी शामिल होती थी। इसके खौफनाक जंगल में इस वक्त एक सियापोश हाथ में ब्रेन गन पकड़े बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ा चला जा रहा था। वो इस तरह मुतमईन था जैसे जंगल के बजाय किसी शहर की पुरौनक सड़क पर फिर रहा हो। कभी कभी वो अचानक ठिटक कर रह जाता और चल नमे किसी आवाज को बगौर सुनता, फिर सर झटक कर आगे बढ़ जाता। अभी तक इसका वास्ता किसी दरिंदे से नहीं पड़ा था। काफी दूर तक वो जंगल में बढ़ता चला गया, फिर एक दरख्त के नीचे आकर रुक गया। ये दरख्त बहुत फैला हुआ था। इस दरख्त का तना बहुत चौड़ा था कि अगर हाथी भी दूसरी छुप कर खड़ा होता तो इस तरह से नजर ना आ सकता। हुसैया वो इस दरख्त के पास खामोशी से खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ा और तने पर हाथ फेरने लगा। अचानक एक हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज आई और तने में एक दरवाजा सा बन गया। वो इधर उधर देखता हुआ दरवाजे में दाखिल हो गया। इसके दाखिल होते ही दरवाजा बंद हो गया। अंदर की तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी। सियापोश ने ब्रेनगन कांधे से लटकाई, जेब में एक छोटी सी टॉर्च निकाली और फिर इस टॉर्च की रोशनी के जरिए वो सीढ़ियां उतरता चला गया। सीढ़ियां काफी गहराई तक चली गई थी। जहां जाकर सीढ़ियां खत्म हो गई वहां आगे एक छोटा सा कमरा था। कमरे का दरवाजा बंद था। इसने दरवाजे पर लगे हुए पीतल के हैंडल को 3 बार मखसूस अंदाज में घुमाया और दरवाजा खुल गया। आगे एक लंबी सी गैलरी थी। गैलरी में कम पावर के बहुत से बल्ब जल रहे थे। गैलरी में हल्की गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थी, जैसे आसपास कोई भारी मशीन चल रही हो। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ गैलरी से गुजरने लगा। गैलरी के दरमियान में एक छोटा सा दरवाजा था जो इस वक्त बंद था। सियापोश ने जेब से एक छोटी सी चाबी निकालकर दरवाजे के ऑटोमेटिक लॉक में डालकर घुमाया और फिर दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाजा बेआवाज खुलता चला गया। ये एक छोटा सा कमरा था जो बेहतरीन और जदीद साख के फर्नीचर से मजियन था। इसने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में मरकजी ट्यूब जल रही थी। इसने ब्रेन गन कमरे के साइड में पड़ी हुई एक टेबल पर रख दी और फिर वह एक अलमारी की तरफ बढ़ता चला गया। इसने अलमारी खोलकर इसके ऊपर वाले खाने में रखी हुई एक छोटी सी मशीन निकाली और फिर इसे लॉक कर कमरे के दरमियान पड़ी हुई एक बड़ी सी मेज पर रख दिया और खुद इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो मशीन में लगी हुई मुख्तलिफ रंगों की तारों को जोड़ता रहा। फिर इसने मशीन के नीचे लगे हुए एक बटन को दबा दिया। मशीन से हल्की हल्की जूजू की आवाजें आने लगी। इसने एक और बटन दबाया तो जूजू की आवाजें तेज हो गईं। वो खामोशी से बैठा रहा। अचानक आवाजें आना बंद हो गईं और फिर एक अजीब किस्म की मिन्नाती हुई आवाज उभरी, जैसे कोई मुंह भेजकर बोल रहा हो। हेलो हेलो, शैतान स्पीकिंग, ओवर। कोई 2 मिनट तक यही फिक्र दोहराया जाता रहा, फिर आवाज आनी बंद हो गई। जूजू की आवाज दोबारा आनी शुरू हो गई। हेलो हेलो, नंबर 2 स्पीकिंग, ओवर। वो भी तकरीबन 2 मिनट तक यही फिक्र दोहराता रहा, फिर इसने बटन ऑफ कर दिया। अब दूसरी तरफ से वही मिनमिनाती आवाज दोबारा उभरी। हेलो नंबर 2, काम किसी स्टेज पर पहुंच चुका है, ओवर, दूसरी तरफ से पूछा गया। बॉस, काम की रफ्तार असली बख्श है, हम जल्दी अपना मिशन मुकम्मल कर लेंगे, ओवर। नंबर 2 ने जो वही सियापोश था जवाब दिया। जंगल में शिकारियों की रुकावट के लिए कहां तक कामयाबी हुई है, ओवर, दूसरी तरफ से सवाल किया गया। बॉस, काफी हद तक हम कामयाब हो चुके हैं। शुरू शुरू में हमें इस तरफ आने वाले शिकारियों को बाइपर के जरिए बेदरी कदर करना पड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता शिकारी इस तरफ आए, खुद ब खुद बंद हो गए। फिर रात को जीरो गन के जरिए रंग बिरंगी शिकारियां छोड़ी गईं और इस किस्म के मुख्तलिफ हरबे अख्तियार किए गए। चुनाचे इस इलाके के लोगों ने जंगल को आते ज्यादा समझ लिया है। अब यहाँ शिकारी आना बंद हो गए हैं और हम बड़े सुकून से अपना काम कर रहे हैं, ओवर, से अपोज ने तफसीली रिपोर्ट दी। ठीक है, मैं तुम्हारी कारकर्दगी से खुश हूँ। वैसे कभी कभी भोले भटके शिकारियों के लिए कोई इंतजाम किया गया है, ओवर, शैतान ने पूछा। यस बॉस, बाइपर मशीन लिए हमारे आदमी दरख्तों में छुपे रहते हैं, ओवर, नंबर 2 ने जवाब दिया। ओके, वैसे मैं 3 दिनों बाद खुद भी तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ, ओवर, दूसरी तरफ से बोलने वाले ने कहा। मुझे खुशी होगी बॉस, ओवर, सियापोश ने मारवाना अंदाज में कहा। ओके, वैसे हर रोज मुझे हालात बता दिया करना, ओवर, बॉस ने कहा। ओके सर, ओवर, सियापोश ने जवाब दिया। ओके ओवर एंड ऑल, वही मिनमिनाती हुई आवाज उभरी और फिर यकलक जूजू की आवाजें आना शुरू हो गई। सियापोश ने तमाम बटन ऑफ कर दिए और फिर तारे अलहदा करनी शुरू कर दी। तारे अलहदा करके इसने मशीन उठाकर वापस अलमारी में रखी और फिर वहां से व्हिस्की की बोतल और ग्लास लेकर दोबारा कुर्सी पर आ बैठा। बहजाद महल के खूबसूरत पोर्च में एक लंबी सी गाड़ी रुकी और फिर ड्राइवर ने बाहर निकलकर कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। पूरज के साथ वाले बरामदे में इस वक्त नवाब बहजाद अली खान अपने दोनों लड़कियों और भांजियों के साथ बजाफ खुद मौजूद था। दरवाजा खुला और एक तवील अकामत और कवि हेकल हफशी, जिसने खाकी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और जिसकी बैल के दोनों साइडों पर रिवॉल्वर लगे हुए थे बाहर निकला। उसकी आंखें इंतहाई सुरख थी। बरामदे में खड़ी हुई लड़कियां इसे देखकर खौफ से सिमट गई। वाकई वो अपने गहरे काले रंग, सुर्ख आंखों और वसी वाली जिस्म की वजह से इंसान के बजाय कोई देव लग रहा था। नवाब की आंखें भी इसे हैरत से देखकर फैल गईं। फिर अफशी कार से निकलकर एक तरफ मौरवाना अंदाज में खड़ा हो गया। चंद लम्हे बाद कार से एक दरमियान कद का खूबसूरत नौजवान बाहर निकला। इसके जिस्म पर टेक्निकलर लिबास था, चेहरा हिमाकतों की आमाजगा बना हुआ था, खूबसूरत और मोटी आंखों में मासूमियत की झलकियां नुमाया थी, जिस्म भरा हुआ और मजबूत था। इसे देखकर खौफ के मारे सहमी हुई लड़कियां अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। नौजवान की हेत ही कुछ ऐसी थी। नौजवान ने इन्हें हंसता देखकर अपनी आंखें इस तरह झपकाई जैसे उल्लू को पकड़कर धूप में बिठा दिया गया हो। अब नवाज साहब के चेहरे पर भी शदीद हैरत के आसार नुमाया थे। ड्राइवर ने कार का दरवाजा बंद कर दिया। वो नौजवान आगे बढ़ा और हैरत से बुत बने हुए नवाब साहब के पास आकर रुक गया। इसके पीछे वो हफ्शी भी था। नवाब साहब अभी तक अपनी हैरत पर काबू ना पा सके थे। नौजवान ने एक लम्हे के लिए इन्हें देखा, फिर रुकू के बल झुकता हुआ इन्हें फर्शी सलाम करने लगा। साथ ही वो नकीबों की तरह बोल उठा, नवाब इब्ने नवाब, खाकान इब्न खाकान, सुल्तान इब्न सुल्तान, बेईमान इब्न, ओ सॉरी प्लीज, नौजवान ने अहमकाना लहजे में कहा तो लड़कियों के जोरदार कहकाओं से बरामदा गूंज उठा। वाली सल्तनत प्रेम नगर, इसने दोबारा अलकाबत शुरू किए। ये क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम, नवाब साहब ने इसके यावो गोया से झिझलाते हुए इंतहाई तरफ लहजे में कहा। नौजवान अचानक सीधा हो गया और फिर सीने पर हाथ रखकर सर को जरा झुकाया और बोलना शुरू कर दिया, आपका मेहमान मसनी अली इमरान इब्न रहमान फरसींदा सर सुल्तान बा अमन अमान हाजिर आमद। अब मान या न मान तुम्हारी मर्जी, आखिरी दो लफ्ज इसने इस तरह लहक कर कहे जैसे गाना गा रहा हो। लड़कियों के हंसते हंसते पेट में बल पड़ रहे थे। नवाब साहब हैरत से गुंग हुए खड़े थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें और क्या ना कहें। अजीब चुगत से पाला पड़ा था। अचानक इन्होंने हंसती हुई लड़कियों की तरह गुस्सीली नजरों से देखा, तुम क्यों हंस रही हो, चली जाओ यहाँ से, नवाब साहब ने इंतहाई तरफ लहजे में कहा और लड़कियां अपने मुंह पर हाथ रखे वहां से चल दी। इमरान अब खामोश खड़ा गोल गोल दीदे घुमा रहा था। नवाब साहब अब इमरान से मुखातिब हुए, तुमने आते ही क्या बकवास शुरू कर दी थी, नवाब साहब का लहजा इंतहाई तलख था। मुझे अफसोस है नवाब साहब, दरअसल मैंने सोचा आप भी रिवायती किस्म के नवाब साहब होंगे, अगर मैंने इस तरह अलकाब व आदाब के साथ सलाम ना किया तो फौरन गर्दन जरी का हुक्म सादिर कर देंगे और फिर एक खौफनाक किस्म का जल्लाद। लेकिन एक बात है, ये जोजत भी किसी जल्लाद से कम नहीं। योमिया 6 बोतल शराब पी जाना जल्लादी नहीं तो क्या है, इमरान ने जोजत की तरफ इशारा करते हुए कहा जो इसके पीछे बुत बना खड़ा था। ये कौन है, नवाज साहब ने जोजत को सर से पांव तक देखते हुए कहा। मेरा बॉडीगार्ड, क्यों आपको पसंद नहीं आया, कहें तो इस जैसा आपको भी मंगवा दूं, इमरान ने कहा। तुम्हें सर सुल्तान ने भेजा है, नवाब साहब ने पूछा। जी हाँ, इमरान ने सर झुकाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि सर सुल्तान तुम जैसे मुसखरे को भेजेंगे, नवाब साहब की आंखों में बेयकीनी साफ पड़ी जा सकती थी। और इमरान ने जेब से एक लिफाफा निकाल कर आगे बढ़ा दिया। नवाब साहब ने खामोशी से इसके हाथों से लिफाफा लिया, इसे खोला और सपना शुरू कर दिया। बहजात, मैं अली इमरान को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, ये तुम्हारी उलझने हल कर देगा, वैसे इसके मुसखरेपन पर मत जाना, ये बाजार जितना मुसकरा है इतना ही दरहकीकत तेज और जहीन है, तुम बिला तकल्लुफ इससे अपना तमाम मसाइल बयान करो, फकत सुल्तान अहमद। नवाब साहब ने खत पढ़कर एक तवील सांस लिया और एक बार फिर गहरी नजरों से इमरान का जायजा लेने लगे। इमरान के चेहरे पर हिमाकतों की तह में कुछ और भी इजाफा हो गया। चल नमे तक वो कुछ सोचते रहे, फिर इन्होंने कांधे झटके, यकीनन वो कोई फैसला करने में कामयाब हो गए थे। इसका पूरा तारुफ कराओ, इन्होंने जोजफ को देखते हुए इमरान से पूछा। जोजफ इमरान के पीछे अटन शरण खड़ा रहा। इसकी सुर्ख आंखें यूं चारों तरफ घूम रही थी जैसे कोई शिकारी किसी शिकार की तलाश में हो। ये मेरा बॉडीगार्ड है जोजफ, कैसा है, इमरान ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। शानदार, नवाब साहब ने बगौर जोजफ की तरफ देखते हुए कहा। इनकी नजरों में तहसीन के आसार नुमाया थे। खाक शानदार कबाड़ा करके रख देता है मेरा, इमरान ने दोबारा मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब? नवाब साहब ने हैरत से पूछा। जनाब 6 बोतल शराब यौमिया पीता है तब इसे होश आता है, इमरान ने इसी लहजे में कहा। 6 बोतल शराब यौमिया तब होश आता है, नवाब साहब ने चौंक कर लफ्ज होश पर जोर देते हुए कहा। जनाब गुस्ताखी माफ, क्या मैं अपनी नौकरी पक्की समझूं? इमरान ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब नौकरी का क्या मतलब? नवाब साहब इस अजीब वगरीब सवाल से बौखला गए। बात यह है कि आप तो मेरा इस तरह इंटरव्यू ले रहे हैं जैसे नौकरी की उम्मीदवार से लिया जाता है, इमरान ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। ओ माफ करना इमरान बेटे, मैं तुम्हें बेटा ही कहूंगा क्योंकि तुम मेरे बेटे की उम्र के बराबर हो। दरअसल सिचुएशन ही ऐसी बन गई है कि मैं हैरत के लगातार झटकों की जद में आ गया हूँ। आओ अंदर चलकर बैठे, नवाब साहब ने कहा। शुक्र है मेरी तो टांगे खड़े खड़े सूख गई, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन नवाब साहब ने कोई जवाब ना दिया, शायद इन्होंने सुनी अनसुनी कर दी थी। इमरान और जोजफ नवाब साहब के पीछे चलते हुए इनके शानदार और वसी वाली ड्राइंग रूम में आ गए। बैठे इन्होंने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जोजफ दरवाजे पर निगरानी करो, इमरान ने जोजफ को हुक्म दिया और जोजफ बगैर कुछ बोले फौजी अंदाज में अबाउट ट्रेम हुआ, फिर मार्च करता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। हाँ तो नवाब साहब, अब आप मुझे तफसील बताएं क्या वाकया है, इमरान ने संजीदगी से नवाब साहब से मुखातिब होते हुए कहा। मेरे ख्याल में अब तुम आराम करते, डिनर के बाद तुम्हें तमाम तफसील से आगाह कर दूंगा, नवाब साहब ने कहा। इतने में एक मुलाजमा कॉफी का जग और प्यालियां ले आई। इसने जग से दोनों प्यालियों में काफी उंडेली और बड़े अदब से इमरान और नवाब साहब के सामने प्यालियां रखकर वापिस चली गई। नहीं मेरे ख्याल में आप अभी बता दें ताकि मैं डिनर तक इसके मुताबिक कोई प्रोग्राम बना लूं। मैं इस सिलसिले में वक्त जाया नहीं करना चाहता, इमरान ने संजीदगी से कहा। बेहतर जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर नवाब साहब ने तमाम वाकयात पूरी तफसील के साथ बता दिए और इसके साथ साथ सियासत के नुकसान का भी जिक्र किया जिसमें शिकारियों से होने वाली आमदनी के अलावा जंगल से लकड़ी की बरामद का कारोबार भी था। इन्होंने ये शायद इसलिए कहा था कि इमरान की नजरों में इन वाकयात की अहमियत उजागर हो सके, लेकिन इमरान को रियासत के नफा नुकसान से कोई गर्ज नहीं थी, वो तो सर सुल्तान की जाती दरख्वास्त पर यहाँ चला आया था। सर सुल्तान ने इसे बुलाकर जाती तौर पर दरख्वास्त की थी और चूंकि इमरान और उसकी टीम काफी दिनों से बिल्कुल फारिग थे, इमरान ने सोचा चलो बेकार से बेकारगी ही भली, काम भी हो जाएगा और तफरी भी। प्रेमनगर के मुतालिक वो भी सब कुछ जानता था, चुनाते वो जोजफ को साथ लेकर यहाँ चला आया। लेकिन अब तमाम वाकया सुनकर इसकी दिलचस्पी इस वाक्य से बढ़ गई थी। हालात वाकई दिलचस्प थे, अचानक बगैर किसी हथियार के शिकारियों की गर्दनें साबुन की तरह कट जाएं और फिर रात को जंगल से बुलंद होने वाली रंगारंग शुआएं और चिंगारियां यकीनन दिलचस्प मामला था। बेहतर नवाब साहब, मैं काम करने को तैयार हूं लेकिन सिर्फ 2 शराइत पर, इमरान ने इंतहाई संजीदगी से कहा। इसके चेहरे पर इतनी संजीदगी तारी थी कि नवाब साहब हैरत से इसकी तरह तक रहे थे। वो सोच रहे थे ये आदमी है या गिरगिट, हर लम्हे रंग बदलता है। कौन सी शराइत? नवाब साहब ने चौंकते हुए कहा। नंबर 1, मैं जो काम भी करूंगा आप मुझे इसकी रिपोर्ट ना मांगे, बाला आखिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, इमरान ने पहली शर्त पेश की, मुझे मंजूर है, नवाब साहब ने बिला तामिल कहा। नंबर 2, जोजफ को रोजाना 6 बोतल शराब मुहैया करना आपके जिम्मे, इमरान ने दूसरी शर्त बताते हुए कहा। भले ये भी कोई कहने की बात है, मैं अपने मेहमानों की जरूरतमंदों का जिम्मेदार हूँ, नवाब साहब ने कदर नागवारी से कहा। ओ माफ कीजिएगा, आप तो नवाब हैं, मैं ना जाने क्या समझ बैठा, इमरान ने अचानक कहा। अब फिर इसके चेहरे पर हिमाकतें जलवा गर्ती और नवाब साहब झेप कर रह गए। अच्छा अब तुम आराम करो, तुम्हारे और तुम्हारे बॉडीगार्ड के लिए कमरे ठीक कर दिए गए हैं, मुलाकात डिनर टेबल पर होगी, नवाब साहब ने उठते हुए कहा। यकीनन यकीनन, इमरान ने सर झुकाते हुए कहा। फिर नौजवान साहब निमेज पर पड़ी हुई टेबल बैल बजाई, फौरन एक मुलाजिम अंदर आ गया, इसने झुककर सलाम किया और फिर मौदबाना अंदाज में खड़ा हो गया। देखो जिमन मेहमानों की इनके कमरों तक रहनुमाई करो, नवाब साहब ने जिमन से कहा और खुद इमरान से हाथ मिलाकर ड्राइंग रूम में बाहर निकल गया। चलिए रहनुमा साहब, इमरान ने जिमन की तरफ देखते हुए कहा और जिमन ने इनके साड़ी से दांत निकाल दिए। फिर बाहर निकलकर इसने जोजफ को भी साथ लिया। हमारी भी हैं रहनुमा कैसे कैसे, इमरान ने चलते चलते गाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने कोई जवाब ना दिया तो फिर झेप कर खामोश हो गया। न जाने क्यों वो बगैर किसी मकसद की हिमाकतें कर जाता था, शायद ये चीज़ इसकी फितरत में दाखिल हो चुकी थी। پارٹ ون یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. کتاب 10 کروڑ میں دو شیطان کا بقیہ حصہ پارٹ 2 میں سماعت فرمائیے.